थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हुए, किन्तु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मसीह महिमा तेरी महिमा, मसीह महिमा ओ सुबह को, ओ दोपहर को, ओ संध्या को, सारी रात्रि को, मसीह महिमा, मसीह महिमा हो तेरी महिमा।
महिमा
ही महिमा, ओ प्रचार से महिमा ही महिमा, मसीह महिमा, मसीह महिमा हो, महिमा ही महिमा, मसीह महिमा, ओ सुबह को, ओ दोपहर को, ओ संध्या को, सारी रात्रि को, मसीह महिमा, ओ संध्या को, सारी रात्रि को, ओ महिमा, ओ
प्रिय मित्र, प्रभुष्य के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरे पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि पत्रस कहता है कि झूठे शिक्षकों पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है, क्योंकि वे उन्हें सौंपी गई पवित्र आज्ञा से फिर गए हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। यद्यपि कि हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, परंतु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम रेडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन सकते हैं। इस घड़ी जब हमारे श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज जो कुछ भी वे सुनते हैं अपने जीवन में समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से चलने पाएं। आप उन्हें हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के छल प्रपंच से, बुरे संगति बुरे बातों से आप बचाएं, ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस घड़ी बीमार है, निराश और परेशान है, किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। पिताजी, आप उनसे बोले और बातचीत करें, उन्हें शांति और आनंद दें, ताकि वे जानने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें बनाया है। उनके जीवन की समस्याओं को आप समझते हैं और आप उसका हल कर सकते हैं। प्रभु, आप उनके साथ हो, उनके सहायक हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि पत्रस झूठे शिक्षकों को कहता है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। जी हाँ, कई ऐसे झूठे शिक्षक हैं जो अपने आप को इस हद तक गिरा दिए हैं। एक कलीसिया में अनेक अप्रवासी जो दूसरे जगह से आते थे, आराधना करने के लिए आते थे, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, उसका आभारी हूं कि उसने मुझे वहां पर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। वह एक बहुत ही अच्छा समय था, क्योंकि बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे थे, परंतु समस्या यह थी कि सुअरों अर्थात नामधारी विश्वासियों और नवजीवन प्राप्त विश्वासियों में अंतर कैसे करूं। मैं बड़ी उलझन में था, परंतु मैंने एक बात सीखी। मार्ग की एक ओर पिता का घर है और दूसरी ओर सुअरों का बाड़ा। पिता के घर लौटने वाले उड़ाव पुत्र सदा ही दिखाई देते हैं। जी हाँ, एक बार मेरे पास एक युवक आया। वह एक पादरी का पुत्र था जो घर छोड़कर सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया था, परंतु असफल रहा। वह शराब पीने का आदी हो गया था। वह सुअर नहीं था। उसने मुझसे कहा, मैंने अपने पिता का नाम खराब कर दिया है। वह तो एक अति भले मनुष्य है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनके पास मैं कैसे लौटूं। वह अब मुझे अपनाएंगे भी या नहीं? मेरे मित्रों, मैंने कहा, मैं उन्हें फोन करता हूं और यदि वह आपसे बात करना नहीं चाहेंगे तो हम फोन काट देंगे। वह तैयार हो गया। मैंने उसके पिता को फोन किया। वह एक माननीय पादरी थे। अभिवादन और हालचाल पूछने के बाद मैं जानता था कि वह सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें क्यों फोन किया है। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ एक व्यक्ति बैठा है जो आपसे बात करना चाहता है। वह जानते थे कि वह कौन था। वह जानते थे कि उनका पुत्र सुअर नहीं, एक पुत्र है। वह रो पड़े और कहा, क्या वह मेरा पुत्र है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उससे बात करना चाहता हूं। वह युवक फूट फूट कर रोने लगा। निश्चय ही उसका पिता भी रो रहा था। मैं उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चला गया। जब उस युवक ने फोन रख दिया तब मैं लौटा। उस युवक ने कहा, मैं घर जा रहा हूं, परंतु यह गणमान्य कभी कभी उलझन में डाल देता है, क्योंकि उड़ाव पुत्र सुअर के बाड़े की ओर जाते हैं और इससे पढ़कर कभी कभी सुअर बाड़े से निकलकर पिता के घर की ओर चले जाते हैं। परंतु सुअर चाहे नहलाया हुआ हो, चाहे कलीसिया में सहायक पास्टर बन गया हो और आप उसे सजा धजा कर देख रहे हो, पहचान नहीं पाएंगे कि यह कौन है। परंतु उसका मन सुअर का ही है और सुअर को कीचड़ ही पसंद है, अर्थात संसार की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, बुराइयां। एक बार एक युवती मेरे पास आई और कहने लगी, मैं इस व्यक्ति को जानती हूं। वहां पूर्व के नगर में संडे स्कूल का अधीक्षक था। वह कलीसिया में सहायक पास्टर भी था। वह शराब पीता है और अपनी पत्नी को तलाक देकर अन्य स्त्रियों के साथ घूमता फिरता है। क्या उसने नया जीवन पाया है या नहीं? मैंने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। उसने कहा, आप एक प्रचारक हैं और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम? मैंने कहा, जी हाँ, मैं सच में कुछ भी नहीं जानता। मुझे कुछ भी पता नहीं है क्योंकि मैं केवल उसे बाहर ही से देखता हूं। परंतु मैं एक काम कर सकता हूं। इस महानगर में एक रास्ता सुअर के बाड़े की ओर जाता है और उसका दूसरा सिरा पिता के घर। हम प्रतीक्षा करके देखेंगे कि सब सुअर बाड़े की ओर और सब पुत्र पिता के घर की ओर जाएंगे। यदि यह व्यक्ति सुअर के बाड़े में रहता है तो वह निश्चय ही सुअर है, क्योंकि पत्रस कहता है कि सुअरों को नहला धुला करके रखें तो भी वह कीचड़ की ओर ही जाएगी। मेरे प्रियो, यह एक धर्म भ्रष्ट की पहचान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय से अधिक भयानक दृश्य दूसरा कहीं नहीं है। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरा पत्रस की पत्री उसके तीसरे अध्याय में आते हैं, जिसका विषय है प्रभु यीशु के आगमन के प्रति हमारा स्वभाव, संसार के लिए परमेश्वर की योजना, प्राचीन संसार, आज का संसार और भावी संसार। विश्वासियों को प्रबोधन देते हैं। मेरे प्रियो, इस अध्याय के तीन मुख्य भाग हैं। पहला, प्रभु यीशु के पुनः आगमन के प्रति मनुष्य का स्वभाव, धर्म भ्रष्टों की परख, और दूसरा है संसार के लिए परमेश्वर की योजना, और तब तीसरा है विश्वासियों को प्रबोधन। यह पत्रस का एक और अद्भुत पत्र है। प्रभु यीशु के पुनः आगमन के संबंध में विश्वासियों का स्वभाव, धर्म भ्रष्टों की परख। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 3:1। दूसरा पत्रस 3:1 में लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, शमौन पत्रस स्पष्ट करता है कि वह ही इस पत्री का लेखक है। यहाँ पर वह कहता है, सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। शुद्ध अर्थात निष्ठावान। मेरे विचार में पत्रस के समय के पवित्र जनों के मन हमसे अधिक शुद्ध नहीं थे। मैंने तो आज तक एक भी मनुष्य को नहीं देखा है जिसका मन शुद्ध हो। एक धार्मिक पंथ था जो कल्पना करने पर विश्वास करता था। उनके पास बड़े बड़े मंदिर नहीं थे, वे छोटे छोटे कोठियों में जाकर सुंदर सुंदर कल्पना करते थे। उन कोठरी में सुंदर चित्र लगे थे और साज सज्जा भी अति सुंदर थी, और वहां सब कुछ सुविधा से पूर्ण था कि आगंतुक को अच्छा लगे और वह स्थान भी उसे पसंद आए। उसके आसपास का वातावरण भी मनमोहक था। उद्देश्य यह था कि वहां बैठने वाले के मन में शुद्ध विचार उत्पन्न हो। मेरे प्रियो, मैंने सोचा कि मैं भी वहां जाकर देखूं, परंतु मैं उनके कोठी में जाना नहीं चाहता था। अतः मैंने अपने कक्ष में ही बैठकर मन में कहा, मैं अब सुंदर विचार धारण करूंगा। आप जानते हैं तब क्या हुआ, मेरे मन में अपने जीवन का सबसे अधिक बुरा विचार आया। मेरे प्रियो, मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे विचार शुद्ध नहीं हो सकते। अतः पत्रस के कहने का अर्थ है निष्ठावान मन, न कि शुद्ध मन। वह उनके मन को पुरानी स्मृतियों में लाना चाहता था, क्योंकि वे सब विश्वासी थे। अतः वह कहता है, तुम उन बातों को जो भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की इस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। मुझे किसी ने कहा, मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, परंतु समस्या यह है कि मेरी भूलने की शक्ति और भी अच्छी है। हम में से अधिकांश की यही समस्या है, और शमौन पत्रस अपने अनुभव से इस विषय चर्चा करेगा। जिस रात पत्रस ने विरोधियों की आग में हाथ तापते हुए प्रभु यीशु का इनकार किया था, जी हाँ, उस समय वह भूल गया था कि प्रभु यीशु ने उसे इस विषय चिताया था। इसे हम लूका रचित सुसमाचार 22:61 में लिखा हुआ पाते हैं कि पत्रस के इनकार करने पर मुर्गे ने बांग दी, और यीशु ने मुड़कर पत्रस को देखा और पत्रस को स्मरण आया कि प्रभु यीशु ने उससे कहा था कि वह मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार उसका इनकार करेगा। पत्रस भी भूल गया था कि उसे परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है। जी हाँ, उसमें भी हमारे समान दुर्बलताएं थी। अतः वह विश्वासियों के निष्ठावान मनों को स्मरण दिलाकर जागृत करना चाहता है। वह उन्हें क्या स्मरण कराना चाहता था, आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 3:2 में लिखा हुआ है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। ध्यान दीजिए, लिखा है पवित्र भविष्यद वक्ताओं, अर्थात पुराने नियम के भविष्यद वक्ता। तब कहता है तुम्हारे प्रेरितों। देखिए, पत्रस अपने आप को उन प्रेरितों से बड़ा नहीं बताता है, वह पौलुस का भी संदर्भ देता है। इसका अर्थ है कि वह पौलुस को भी प्रेरित में गिनता था। वह जिन बातों का स्मरण कराना चाहता है वे बातें प्रेरितों ने लिखी थी, और वही बातें पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं का भी विषय था। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3:3 में लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है पहले यह जान लो। जी हाँ, यह बात उन्हें सबसे पहले जान लेनी थी कि आगे क्या होने वाला है। तब वह कहता है अंतिम दिनों में, यह आज का समय है जो महाक्लेश के समय तक चलेगा, उस समय कलीसिया उठा ली जाएगी। यहाँ पर पत्रस कहता है कि ठट्ठा करने वाले, अध्याय 2 में जिनका विवरण किया गया है वे धर्म भ्रष्ट जन हैं। ये ठट्ठा करने वाले कलीसिया के सदस्य होंगे और अधिकतर पादरी लोग होंगे जो अपनी अभिलाषाओं के लिए ही जिएंगे। मेरे प्रियो, वे परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं करेंगे। ऐसे लोग ही बाइबल के सत्य को दूषित करते हैं जो पापों का त्याग करके प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, उस पर परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 में पौलुस कहता है कि उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा है, यदि वे प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे तो वह पर्दा उठ जाएगा। उनकी समस्या बौद्धिक नहीं मन की है, अतः वे झूठा वाद प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं और वे पर्दे से अभी भी अपने मुख को छिपाए हुए हैं। मेरे श्रोता मित्रों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही बताना चाहता है कि हम परमेश्वर की सत्यता को जानें, सूरों के समान अपने जीवन को न जिएं, परंतु उस महान परमेश्वर की ओर लौट जाएं, जहां पर शांति और आनंद है। जी हाँ, हम अपने ही बुद्धि पर निर्भर न रहें, परंतु परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबों की सहायता करे और आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 22601, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
बिना चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूंगी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे मुझे